तो उन्हीं निम्नतम विचारों पर ही खड़ा हुआ है, झूठ पर ही हमारे जीवन का सारा साम्राज्य हमने खड़ा करके रखा है। अगर गौर से देखें, बहुत पहले जब अकबर बादशाह हुआ करते थे 15वीं शताब्दी के लगभग, तो उस समय एक बार उनका मन हुआ कि वे नर्मदा का दर्शन करने के लिए जाएं। ऐसी एक मान्यता प्रचलित थी। देखिए, मान्यता और सच्चाई में बात अंतर है, नहीं तो आप ये मानो कि मैंने कोई इस तरह की बात कह दी। मान्यता और सच्चाई का अंतर समझना चाहते हैं? बहुत जरा सा अंतर है, एकदम सहसा समझ में आ जाएगा। सच्चाई ये है कि मैं पुरुष हूं, इसलिए किसी पुत्र को अपने भीतर पेट में रखकर जन्म नहीं दे सकता, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि जन्म लेने वाले पुत्र को लोरी सुना करके और सुनाऊं नहीं, लेकिन मान्यता है कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मां का काम है ये। सच्चाई ये है कि मैं व्यापारी हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं घर में और दाल चावल मैं बीन सकूं, लेकिन मान्यता यह है कि मैं पुरुष हूं इसलिए दाल चावल तो मैं बीनेगी, मैं थोड़ी बीनूंगी। ऐसे में सच्चाई और मान्यता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी मान्यताएं हमने बना रखी हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दर्शन नर्मदा के करने के लिए एक मान्यता क्योंकि जाएंगे और वहां पर दर्शन कराने वाले बहुत सारे पुरोहित पहले से ही तैयार रहते थे। कोई बड़ा व्यक्ति आए नर्मदा के दर्शन के लिए तो उससे बहुत सी बख्शीश मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, तो सब आगे आए कि मैं करवाऊंगा दर्शन, सारा अनुष्ठान जो भी उस दर्शन के दौरान होगा वो सब मैं कराऊंगा। सब में होड़ लगी हुई थी। बादशाह बहुत समझदार थे, उन्होंने उतने सारे पुरोहितों में से एक को इशारा किया, बिल्कुल अननोन पर्सन को। अब वो तो बहुत खुश हो गया, वो खुश हुआ, लेकिन बाकी लोग कैसा लगा उनको? अच्छा लगा? आप ही कह रहे हैं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं लगा होगा, ये अपने मन में फौरन आ गया, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव अपन को कहां अच्छा लगता, कब अच्छा लगा देख लो। ये अपना खुद का अनुभव है कि अपन स्वयं कह देते हैं कि नहीं अच्छा लग ही नहीं सकता है। किसी एक को अगर ये मात मिल गया है तो बाकी सब अपने को मातहीन समझते हैं, जबकि किसी का भी महत्व किसी एक के महत्व बनने से कम नहीं हुआ है। लेकिन देखिएगा, हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ विचार होते तो हम अपने को महत्वहीन समझते ही नहीं दूसरे के महत्वपूर्ण हो जाने पर। लेकिन हमारे विचारों की निम्नता देखिएगा कि हम फौरन जो है किसी को महत्वपूर्ण होते देख करके और अपने को महत्वहीन समझने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ, बाकी सब ने बहुत ईर्ष्या से भर करके और बाय विशेष देना शुरू कर दी। उस एक पुरोहित को कुछ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि देखें अब क्या होता है, बादशाह कितना कुछ देते हैं। कुछ लोग तो इसी चर्चा में मशगूल थे कि अब तो बारे न्यारे हो गए उस पुरोहित के, अब तो घर भर जाएगा, और यो त्यों जो भी जिसके मन में आ रहा था उस सब। और बादशाह को दर्शन कराए, जो भी अनुष्ठान करना था वो सब अनुष्ठान हुआ। बाद में जब बादशाह लौटने लगे तो इनाम बादशाह ने अपने शेरवानी में पॉकेट में हाथ डाला और कुछ ऐसे निकाला, लोग आंख लगाए हुए हैं, दूसरे को मिलता देखने के लिए भी आंख लगाए रहे, हमें क्या मिला है ये देखने के लिए नहीं। अब अपने आप एनालिसिस करते जाना कि हम बहुत श्रेष्ठ विचार वाले हैं या अभी हमारा पूरा साम्राज्य निम्नतम विचारों पर खड़ा पूरा जीवन। अब सब आंख लगा के देख रहे हैं क्या मिलता है, और राजा साहब ने जान बूझ करके वो रख के आए थे एक कानी कौड़ी, फूटी कौड़ी, वो फूटी कौड़ी निकाल करके और पुरोहित की जब बढ़ाई, पुरोहित ने देख तो लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने अहोभाव से उसे ग्रहण किया कि देखने वालों को लगा कि मानो हीरा दे दिया हीरा। हाथ में तौड़ी आने पर भी जिसके पास श्रेष्ठ विचार है वो उस कौड़ी में भी हीरा देखता है, वरना हीरे जैसा जीवन मिलने पर भी लोग उसे कौड़ी के कीमत पर बेच देते हैं अगर निम्नतम विचार है तो। आया समझ में तो आया होगा, आता तो सब समझ में, मजा तो यही है तो समझ में आता है, सिर्फ चुपचाप दम साधे। और क्योंकि वन साइड मामला है, नहीं मैं कह रहा हूं, अगर बोलने का अवसर मिले तो सब बोल करेंगे, अब चुपचाप सुनना पड़ रहा है क्या कहते रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अब ऐसे लिया जैसे कि कोई बहुत बेशकीमती चीज मिल गई हो और अपने पॉकेट में रख लिया। पुरोहित में भी राजा तो चले गए, बादशाह लोगों ने घेर लिया, क्या हुआ, बहुत इनाम मिला होगा। पुरोहित ने बहुत गदगद होकर के, बहुत हर्षित होकर के कहा कि हां मेरा सौभाग्य, आप सब लोगों की शुभकामनाएं। हाँ ये तो कहनी पड़े, भले ही लोगों ने बैठ विशेष दी हो, आप सबकी शुभकामनाएं, मेरा सौभाग्य, राजा ने वो चीज दी है इतनी बेशकीमती है कि मेरी सात पीढ़ियां भी खर्च करें तो भी जो की तो बनी रहेगी। बेटा बात तो सही गई, झूठ नहीं गई उसमें, सात पीढ़ियां भी खर्चे तो खत्म नहीं होने वाली इतनी बेशकीमती चीज देके गया राजा। अब तो सब सत्ते में आ गए, सब जगह चर्चा का विषय बन गया कि बादशाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बेशकीमती चीज दी है और सब दूर उसके चर्चे होने लगे। और बढ़ते बढ़ते बात राजमहल तक पहुंची और राजा तक पहुंची, राजा भी एक बार मुश्किल में पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ले तो गया था कौड़ी ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे से और हीरा ही पहुंच गया। बुलाया जाए पुरोहित जी को, अब तो सब तरफ और चर्चा होने लगी कि लगता है और इनाम मिलेगा, अब तो दरबार में बुलाया गया। पहुंचे तो राजा ने आते ही साथ पूछा कि क्यों पुरोहित जी, उस दिन बख्शीश में क्या मिला आपको? बोले हुजूर, देने वाले बहुत देखे हमने लेकिन आप जैसा नहीं देखा। राजा को बहुत मुश्किल हुई, देने वाले बहुत देखे हमने, आपके जैसा देने वाला नहीं दिए, देखा क्या चीज दी है, मेरी सात पीढ़ियां भी उसे उपयोग में ले तब भी खत्म नहीं होने वाली, ज्यों की त्यों बनी रहे। अब राजा मुश्किल में, राजा ने कहा कि दरबार खाली किया जाए, मैं पुरोहित से अकेले में मिलूंगा। ठीक, पुरोहित जी तो समझदार थे, समझ रहे थे, जैसे ही राजा अकेले एकांत पाकर के और गद्दी से उठ करके खड़े हुए पुरोहित जी के पास आने के लिए कि चुपचाप पूछेंगे, पुरोहित जी जोर से हंसे और कहा कि राजन चिंतित ना हो, आपने जो दिया है वो ठीक दिया है, आपने जो मुझे कौड़ी दी है वो बिल्कुल कौड़ी ही दी है, आप निश्चिंत रहिएगा, लेकिन आपकी वो कौड़ी आपके हाथ से दी जाने के बाद पूरे साम्राज्य के बराबर है, क्योंकि उतनी सी बात के लिए आपको भी अपने दरबार में और अपनी गद्दी से खड़े होना पड़ा, मैंने तो कौड़ी में सारा साम्राज्य खरीद लिया, क्योंकि वो कौड़ी आपके हाथ से। हमारा साम्राज्य भी हमने ऐसी ही कौड़ियों पर आधारित करके रखा है। देखा जाए तो अगर वो घटना तो उसके श्रेष्ठ विचारों के कारण और उसके जीवन को एक सत्य जीवन को दिशा देने वाली थी। क्या हमारे अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही बुराइयां और ऐसे ही झूठ और इन सब पर हमने अपने जीवन का साम्राज्य खड़ा करके रखा। हम गौर से देखें तो हमारे आसपास निम्नतम विचारों पर ही हमने अपना पूरा जीवन आज तक जिया है, बना करके रखा हुआ है। श्रेष्ठतम विचारों को सहसा स्वीकार करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करने लगते हैं तो एक चुनौती सामने आती है। अगर कोई ये कहे कि पाप करना तो बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत सहज सी चीज है, हर एक से हो जाता है, तो फिर चैलेंज खत्म हो जाता है, फिर चुनौती खत्म हो जाती, बहुत बायोलॉजिकल नीड है, बहुत सहज सी प्रक्रिया है, तब तो कोई चुनौती नहीं है। मैंने अगर पाप से विमुक्त नहीं हो पाया हूं तो कोई बात गिल्ट फील करने की बात, कोई अपराध बोध होने की बात नहीं आती। जब हमें इन चीजों को हम सहज मान लेते हैं, सब तो करते हैं, मैं थोड़ी अकेला कर रहा हूं, यह जो हमारे भीतर विचार है वो अपने निम्नतम विचार को ही पुष्ट करने वाला विचार है। क्रोध कर लेते हैं हम, आकांक्षाओं और इच्छाओं में भटक जाते हैं, इसके बाद भी हम सहसा स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सबको आता है, मुनि महाराज को भी गुस्सा आ सकता है, इसमें क्या बात, उनके भीतर भी तो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, संसार में तो सबके होती, ऐसा हम तर्क दे करके अपने उस निम्नतम विचार को पुष्ट कर लेते हैं। जबकि शेष विचार था कि मेरा स्वभाव पाप से मुक्त होना है, मेरा स्वभाव इन कषायों से मुक्त होने का है, मैं तो वीतराग निर्मल स्वभाव वाला हूं, ये वीतराग और निर्मल स्वभाव ये मेरे लिए श्रेष्ठतम विचार हो सकता है, लेकिन इसका मैं पोषण नहीं करता हूं, पोषण तो मैं निम्नतम विचारों का ही करता हूं। अगर किसी सज्जन पुरुष की निंदा करनी हो, सज्जन पुरुष की निंदा में भाग लेना हो, बहुत गर्मजोशी से भाग लेते हैं, क्योंकि निंदा करके उसकी सज्जनता का जो चैलेंज था वो खत्म हो जाता है कि देखा बने फिरते थे सज्जन, देख लिए उनके लक्षण, इसलिए तो हम नहीं बनते ऐसे, हम जैसे वैसे ठीक। ये हमारे अंदर हमें झांक करके देखना पड़ेगा कि सचमुच क्या हम श्रेष्ठतम विचारों को प्रायोरिटी देते हैं या कि हम अभी भी निम्नतम विचारों का ही पोषण करते हैं। और इतना ही नहीं, जो विचार निम्नतम है उनकी व्याख्या भी हम अपने ही मन मुताबिक करते हैं। जैसे अगर धर्म के क्षेत्र में कहा जाए कि आत्मा अजर अमर शाश्वत है तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है, इसलिए तो ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने वरने वाली तो है नहीं, और आज कल्याण नहीं करो तब भी क्या फर्क पड़ता, कल कर लेंगे, मरना थोड़ी, आत्मा तो शाश्वत है, आप नहीं कहा था, और शरीर मरण धर्म है, ये व्याख्या की जाए तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे, अरे भैया जब मर नहीं है तो उसके पहले ही आनंद ले लो शरीर से, क्योंकि मर ही जाना। देखा आपने क्या व्याख्या कर लेते हैं अपन, शरीर नाशवान है इसलिए अभी शरीर से जितना हो सके भौतिक सुख प्राप्त कर लो, और आत्मा तो जो मेरा अमर है, जल्दी क्या पड़ी हुई, आज नहीं कल कल्याण कर लेंगे, कोई कहां जाना है, कोई जल्दी थोड़ी। ये अर्थ अगर हम निकालते हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए चिंतित नहीं होते हैं तो इसके मायने हैं कि अभी हमें इस संसार में ही और आनंद आ रहा है, हम इसी का पोषण कर रहे हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हाँ, अपने भीतर हम झांक करके देखें कि क्या सचमुच मैं संसार का ही पोषण तो नहीं कर रहा, मैं अपने इन इच्छाओं का, कामनाओं का, अपने भीतर के क्रोध मान माया लोभ का, इन्हीं का सुबह से शाम तक पोषण तो नहीं करता रहता? अगर इन सब का पोषण करता हूं तो मानिएगा भी निम्नतम विचारों का ही पोषण कर रहा हूं। मैं अपनी स्वाभाविक अवस्था जो कि मेरी ऊंचाई है, जो कि मेरी अच्छाई है, जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए, मुझे पोषण उसका करना चाहिए। दिन भर में कुछ थोड़े से क्षण, ये एक अवसर अपन को मिला। देखो पहले कहां था अपने पास इतना समय, और था भी तो कहां चला जाता था। अब तो देखता हूं मैं दोपहर में 2:30 बजे से रास्ते पर लोग बता रहे थे मुझे कि जल्दी 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 आ रहे लोग, अरे टाइम हो गया है। सब ऐसे हो गए, सब स्टूडेंट जैसे कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे जल्दी तैयार कर दो, ऐसे बड़े बड़े लोग भी। ये क्या चीज है? अब थोड़ा सा हमें श्रेष्ठतम विचारों का पोषण करने का मन हो रहा है, और हम जल्दी से वो जो संसार के काम है वो पहले भी करते थे, अभी भी जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके निपटा करके, और आप थोड़ा सा समय निकाल लो, मैं वहां जाकर के थोड़ी धर्म की बातें सीख लूंगा। दोपहर है तो, सुबह है तो, शाम है तो, अब ये घंटे घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे हमारे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठतम विचारों का पोषण करने के लिए मिलने लगे। वरना तो वही समय है, वही 24 घंटे हैं, हम उन्हीं सांसारिक चीजों के ही पोषण में अपना पूरा दिन, क्या पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमने एक बात सीख ली कि मेरे अपने श्रेष्ठतम विचारों के पोषण के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए, वरना मैं जीवन भर निम्नतम विचारों का ही, कषायों का ही पोषण करता रहूंगा। उसके लिए मुझे उपाय सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति, स्वाध्याय और त्याग तपस्या। ये तीन ही चीजें मेरे हाथ में है। मैं भगवान की भक्ति अत्यंत श्रद्धा और कदर से करूं। भगवान की भक्ति करने से मेरे अंदर श्रेष्ठतम विचारों का पोषण होता है, क्योंकि भगवान मेरी ही श्रेष्ठतम अवस्था का नाम है। मेरी ही उस श्रेष्ठतम अवस्था को जब मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं जो भगवान है उनके जैसा हो जाऊंगा। इसलिए मैं उनकी पूजा और भक्ति के द्वारा अपनी ही श्रेष्ठता का पोषण करता हूं, अपनी उस श्रेष्ठतम अवस्था की प्रशंसा करता हूं, उसको पाने की भावना भाता हूं। ये विचार हमारे भीतर आना चाहिए। भक्ति, पूजन और हमारी भावनाएं जो श्रद्धा से संबंधित हैं, वे सब हमारे विचारों को श्रेष्ठतम बनाने में सहायक हैं, हमें उन निम्नतम सांसारिक विचारों से बचाने में वे हमें सहायक हैं। वर्णी जी के जीवन का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, शायद मुझे याद नहीं आता, मैंने आपसे कह भी दिया हो सकता है, अभी अभी मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कह दिया, पर आ गया मन में तो फिर से आपको कहूं। वो एक 36 किलोमीटर शिखर जी की यात्रा का रास्ता अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पहले हुआ करता था, और पूरे पहाड़ के नीचे नीचे से, और 2 दिन में वो यात्रा पूरी की जाती थी, अभी भी है शायद। तो वो यात्रा पूरी कर रहे थे वर्णी जी, तो लौटते समय थोड़ा और रह गया, लेकिन प्यास से जी बहुत बेहाल हो गया। ऐसा लगा कि शायद इस यात्रा के पूरे करने से पहले ही प्राणांत हो जाएगा। अब क्या करें? तो वन्नी जी ने भगवान को स्मरण किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त की। लेकिन कैसे श्रद्धा भक्ति व्यक्त की? उनके श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का ढंग अलग था। भगवान, हे पारसनाथ, आपके दर्शन के लिए, वंदना के लिए मैं यहां आया था। मैं वैसे जैनी नहीं हूं, मैंने बहुत मुश्किल से इस धर्म को प्राप्त किया है, अहिंसा को। अब देखो, आपकी वंदना करते करते अगर हमारे प्राण निकल गए तो हमारे तो कछु नहीं हुई है, बदनामी आपकी हुई है। ऐसा ऐसी भक्ति कर रहे हैं। देखो, कह रहे हैं कि अगर आपके वंदना करते करते हमारे प्राण निकल गए तो हमारे तो भाव अच्छे हैं, आप में लगे हैं, स्वामी तो स्वर्ग से कमती मिलने वाला नहीं, सो हमारा तो भले ही हो गया, लेकिन बाद में चार लोग कहेंगे कि देखो वंदना को गया था व्यक्ति और उसका ऐसा वंदना के दौरान ही मरण हो गया, सो बदनामी आपकी हुई, कोई नहीं आया फिर वंदना। अब अगर आप अपनी बदनामी से बचने हुए, अब देखो आप बचना बड़े सरल परिणाम थे उनके, कोई मन में चालाकी नहीं थी, कोई मन में उलाहना देने का भाव नहीं था, अगाढ़ श्रद्धा थी। ये श्रद्धा के चलते ये भाषा निकल गई है, तो मान कुछ नहीं रहे हैं। सोचिएगा मेरे जीवन में ये श्रद्धा बनी रहे और लोगों को भी श्रद्धा बनी रहे, सो ऐसा उपाय आप ही करो। और कहते हैं कि 10 कदम आगे चलने पर एक छोटे से गड्ढे में से पानी का झरना बहता हुआ दिखाई पड़ गया, सो वहां अपने कपड़े से पानी छान करके और बढ़िया से और पानी पिया और आगे 50 कदम चले तो वहां पर बेहाल थे पानी के अभाव में लोग। उनने कहा वर्णी जी अब तो 4 कदम भी चलना मुश्किल है, हमारी तो शक्ति नहीं है, आप हमें संबोधन दो, हो सकता है प्राणांत हो जाए। वर्णी जी ने कहा घबराओ नहीं, हम तो अब भी 50 कदम पीछे ही बढ़िया स्वच्छ जल पी के आए हैं, आओ चलो ले चलते हम तुम्हें वहां ले गए। तो वहां तो कुछ नहीं था, जहां थोड़ी देर पहले झरना था पानी का और वहां कुछ भी नहीं है। वो काहे का झरना था भैया? वो मेरी श्रद्धा का झरना था, वो रंगी जी के अपने अंदर जो श्रद्धा भाव था उसका झरना, जो प्यास बुझा देता है। श्रद्धा संसार की सारी प्यास, संसार के सारे असंतोष को नष्ट कर देता है। व्यक्ति के मन में अगर संतोष भाव आ जाए तो कहीं कोई उसके जीवन में संसार की आकांक्षाएं, संसार की जो प्यास है जो कि हमें भटकाती है संसार में निम्नतम विचारों की तरफ ले जाती है, उससे हम बच जाते हैं हमारी श्रद्धा और भक्ति से। ये एक उदाहरण है उस चीज का। और निरंतर अपने आत्म कल्याण के लिए विचार करते रहना, जैसा विचार आचार्य भगवंतों ने परंपरा से हमें दिया है, अर्थात ग्रंथों के माध्यम से, उसके स्वाध्याय के माध्यम से, हम निरंतर और श्रेष्ठ विचारों का ही चिंतन करते रहे तो हम बच सकते हैं इन संसार के निम्न विचारों से। जब हम पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो देखते हैं अपन प्रथमानी योग पढ़ते समय कैसे कैसे और मुश्किलों के बाद मोक्ष मार्ग पर चलकर और सफलता प्राप्त करते हैं, कैसे संसार के इन सांसारिक प्रपंचों में लगे हुए जीव भी सहसा विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के और देखते देखते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ करके क्या लगता है? पढ़ करके लगता है कि हाँ वास्तव में तो यही मेरे लिए श्रेष्ठ है, मैं भी ऐसा ही करूं। उतनी देर के लिए भावनाओं में कैसी निर्मलता आती, जब अपन रोज और नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मन में उतनी देर के लिए ही सही, बात को ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जितनी देर घंटे भर हमने अच्छी बातें सुनी है, अच्छे विचार हमारे भीतर रहे हैं, चलो उतनी देर के लिए सही, हमारा वो एक घंटा तो सार्थक हो गया। निम्नतम विचारों से हम बच गए, हमारे पास कुछ अच्छे विचारों की संपदा इकट्ठी हो गई। तो स्वाध्याय भी दूसरे नंबर पर रखा, भगवान की भक्ति और अपने आत्म कल्याण के लिए दो बातें। रोज हम अपने जीवन में जो हमें दिए गए हैं श्रेष्ठ विचार, उनका हम रोज अभ्यास करें। और एक ही चीज और बची, अपने शरीर से त्याग तपस्या करें, श्रम करें। श्रम हम करते तो हैं, लेकिन वो सांसारिक श्रम है, वो परिश्रम बहुत सांसारिक है। तपस्या और त्याग वास्तव में इस शरीर के द्वारा किए जाने वाला श्रम है, और उसी से बना हुआ श्रमण, जो निरंतर त्याग तपस्या में लगे हुए हैं पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, वे ही श्रमण कहलाते हैं। ये पूरा श्रमण संस्कृति जिसको अपन कहते हैं वो इसी वजह से है कि त्याग तपस्या में हम अपनी देह को लगा देते, अपने मन को हमने लगा दिया है ईश भक्ति में, अपनी वाणी से हम उच्चारण कर रहे हैं वो श्रेष्ठ विचार, वो वाणी जो भगवान की वाणी है उसे हम अपनी वाणी से उच्चारण कर रहे हैं, और हम अपने शरीर को लगाए हुए हैं भगवान के कहे गए त्याग तपस्या के मार्ग में। फिर देखिएगा कैसे नहीं हम अपने उस जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं, बहुत आसानी से बना पाते हैं। त्याग तपस्या कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। भैया तपस्या का नाम सुनकर सहसा ऐसा लगता है जैसे कि धूप में और बैठ करके और मुझे कोई तप तपना है, ऐसा कोई तपस्या का अर्थ नहीं है। इच्छाओं को हम रोक ले गए, इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर ले गए, वास्तव में तपस्या वही है, इच्छा निरोधा तपा, ऐसा अपन हमेशा करते रहते हैं। हमारे भीतर जितनी सांसारिक आकांक्षाएं हैं हम उनमें से थोड़ी सी जीत लें उतनी हमारी तपस्या होगी। हमारे जीवन में जितनी आकांक्षाएं हैं हम उनको पूरा करते रहते हैं, उसमें से दूसरे के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दें, वही तो त्याग है। हम अपने इच्छाओं को जीत लेते हैं वो तप हो जाता है, और हम अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करके दूसरे को भी थोड़ा सा दे देते हैं वो हमारा त्याग हो जाता है। ज्यादा कठिन नहीं है, इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज तो मेरा मन वो जो एक छोटा सा उदाहरण है वो देने का है। मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चोर व्यक्ति था, सोचिएगा, वो ट्रेन में और जा रहा है, बहुत सारी चोरी नहीं की, चोरी अवश्य की। अब देखता है वो ट्रेन में कि एक कनस्तर में रुपए भरे पड़े हैं। ये घटना स्वतंत्रता के पहले की है, आज दिन स्वतंत्रता का है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन बैठे, मुझे लगा कि शायद ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की होगी, कितना सत्याग्रह किया होगा, उसकी है ये घटना। वो कनस्तर जिसमें कि खुले हुए रुपए नगद पैसे सब कुछ उसमें डले हुए हैं, और एक बुजुर्ग से वृद्ध व्यक्ति खादी पहने हुए उस कनस्तर के पास बैठे हैं। वो और कुछ नहीं था, जो सत्याग्रह कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए उनके लिए मदद के लिए धनराशि इकट्ठी की जा रही। चोर की निगाह उस पर पड़ी, उसे क्या मालूम कि ये संपत्ति काहे के लिए इकट्ठी की जा रही। उसने वो बुजुर्ग वार जो थे उनको क्या करना था, एक धक्का दिया तो वो गिर गए, देख क्या लगनी थी, इतने बुजुर्ग थे वो वृद्ध थे, जरा सा धक्का दिया उसने, हट्टा कट्टा चोर था, वो गिर गया और उठाया कनस्तर और चल दिया। अब कोई पकड़ने वाला भी नहीं, कनस्तर में एक रसीद बंदी भी पड़ी हुई थी, जिसने जितने पैसे दिए हैं उसको रसीद दे दी गई है कि आपसे इतने पाए। सत्याग्रह ये गांधी जी ने चलाया था, जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे मालूम, विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही थे, जेल गए थे सबसे पहले, तब इन लोगों ने, दोनों का मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानता हूं, गांधी जी बहुत श्रद्धावान थे और अत्यंत ज्ञानवान थे विनोबा, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, और साथ में दोनों के अंदर अपरिग्रह की बहुत अच्छी धारणा थी। जैन नहीं होने के बाद भी अपरिग्रह की जीवन में अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती थी, परिग्रह में लिप्तता नहीं थी। ये बात बड़ा उदाहरण है। ये दो लोग जिनका कि आज हमें और जरूर से स्मरण कर लेना चाहिए, स्वतंत्र देश में बैठे हुए हम एक नागरिक की हैसियत से, नागरिक होने का भी अपना सौभाग्य, वो भारत के नागरिक होने का, इसको छोटा मोटा सौभाग्य नहीं मानना, भरत देश में बैठे हैं, चक्रवर्ती भरत के देश में, भगवान ऋषभदेव के पुत्र। उस भारतवर्ष में उसके नागरिक होने का है क्या नागरिक वास्तव में? जिसके जीवन में श्रद्धा है, आत्मज्ञान है और साथ में त्याग तपस्या है, वो है सिंबल भारतीय नागरिक होने का, वो है भारतीय संस्कृति का सिंबल, वो है उसकी पहचान कि हाँ जहां श्रद्धालु लोग हैं, जहां आज भी आत्मज्ञान है, अध्यात्म जहां पर है वो भारत है, जहां आज भी त्याग तपस्या का सम्मान होता है, जहां लोग स्वयं त्याग तपस्या करते हैं, वो है भारत, स्वतंत्र भारत। हमने स्वतंत्रता इसी के लिए हासिल की थी कि हम अपने श्रद्धा को व्यक्त कर सके, हम अपने आत्मज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण कर सके, हम त्याग तपस्या के मार्ग पर चल सके, वरना हम मजबूर थे, हम ये कुछ नहीं कर सकते थे, ना हम अपने धर्मायतनों में जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते थे, ना हम अपने शास्त्रों का ऐसे मंच लगा करके और ना अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे, ना हम त्याग तपस्या के मार्ग पर चल सकते थे, हम मजबूर थे जब हम किसी के बंधन में थे, हम मुक्त हुए, आज पहले के लिए मुक्त हुए, इसके लिए कि हम पाप करने लगे, हम भौतिक सुखों में भौतिक लिप्सा में लिप्त हो जाए, इसके लिए स्वतंत्र नहीं हुए, हम इसके लिए स्वतंत्र हुए कि हम ठीक से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, अपने आत्मज्ञान से अपना कल्याण कर सके, त्याग तपस्या कर सके। ये दिन था आज का दिन, और वो सत्याग्रह कि जैसे ही रसीद बंदी देखी उसने, चोर भी एक बार मुश्किल में पड़ गया, जी मैंने क्या किया, ये तो बात बड़ा अपराध हो गया, मैंने और चोरियां की हैं, वो उसको थोड़ा अपराध लगता था कि कर रहा हूं, लेकिन ये मैंने क्या किया, ये सत्याग्रह जो लोग कर रहे हैं उनके लिए संपदा इकट्ठी की गई और मैंने उससे चुरा लिया। कहते हैं उस रसीद बंदी पर अपने हाथ से अपने अभी तक के जितने पैसे उसके पास थे वो सारे पैसे उस कनस्तर में डाल दिए और उस रसीद पर अपना नाम लिख करके कि इतने पैसे मैंने भी इसमें सत्याग्रहियों के लिए दिए और इतना ही नहीं, मैं अब आगे से चोरी नहीं करूंगा, यही मेरा सत्याग्रह है। ये उस रसीद बंदी पर लिखकर उसी कनस्तर में डालकर उन बुजुर्ग भारत के पास उनके पैर छू के रख करके गया, आप इसको त्याग मानेंगे, तपस्या मानेंगे? नहीं मानेंगे, आप तो इसी को मानेंगे कि आपने क्या क्या छोड़ा है आज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ठीक नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया कि कल आपका उपवास था, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने जीवन के लिए बहुत ऊंचा उठाने के लिए ये सब करते हैं त्याग तपस्या, लेकिन त्याग तपस्या का एक रूप ये भी है, उससे क्या हम वंचित रहे? इस रूप को भी हमें अपने जीवन में और अभिव्यक्त करना चाहिए। कितने ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में जब हमारे थोड़े से त्याग से दूसरे का भी उपकार होता है, त्याग से हमारा उपकार होता है, यह तो बहुत अच्छी चीज है ही, लेकिन दिन भर में एक ऐसा भी त्याग करें, थोड़ी सी तपस्या अपनी आकांक्षाओं को जीतने की, दुकान पर आकर के कोई हमसे चार पैसे की चीज मांगता है, 40 पैसे में देने का मन होता है, ये आकांक्षा ही तो है, अपनी इस आकांक्षा को थोड़ा सा नियंत्रित कर ले और चार की चीज 40 में न दे करके और चार में दे दें तो क्या क्या घाटा हो जाएगा? घाटे की सौदा तो कोई नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी ये तपस्या करने का ढंग ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे अपने त्याग करने का ढंग ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि उस चोर ने, और उस दिन सत्याग्रह के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए और ऐसा कुछ किया। हम अपनी आत्म स्वतंत्रता के साथ साथ प्राणी मात्र के स्वातंत्र के लिए कुछ ऐसा उपाय करें तो दोनों चीजें हमें भी इस संसार से मुक्ति मिलेगी, हम भी अपने जीवन में उस श्रेष्ठता को हासिल कर पाएंगे और हमारे आसपास का परिवेश भी बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत सुखद और बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने आत्म स्वातंत्र के श्रेष्ठतम विचार का ही पोषण करें और जो हमें संसार के बंधन में डालने वाले भौतिक सुख हैं उस निम्नतम विचार से अपने को मुक्त कर सकें। इसी भावना के साथ आज के दिन अपन एक साथ मिल बैठकर मनोकार करते हैं ताकि हमारा मन पवित्र हो और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें।
Thank you.
राजा मुनि
महाराज की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, मिट्टी से भी सस्ता है। के निकल जा इस बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। जिंदगी है क्या चीज यहां, मत पूछ नयन भर आते हैं। जिंदगी क्या है चीज यहां, मत पूछ नयन भर आते हैं। जिनको लगाया गले विषद वे मिलकर सभी जलाते हैं, मिलकर सभी जलाते हैं। साथ में आता नहीं है तेरे, साथ में जाता कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता हिफाजत कोई नहीं। शब हृदय में तुम्हें बसाऊं चलता ही जाऊं भगवान तेरे गुणों को गाऊं
भगवान तेरे गुणों को गाऊं विशद हृदय में तुम्हें बसाऊं भगवान तेरे गुणों
दुष्टविकारों का हो सफाया, शोपुर को अपना कदम बढ़ाऊं, विशद हृदय में तुम्हें बसाऊं। शत नमन सिर पे हो तेरा हाथ, हे मेरे गुरुवर परम है तुम्हें शत शत नमन सिर पे हो तेरा हाथ। तू ही मेरा है शत शत नमन सिर पे हो तेरा जब तक न पहुंचूं नहीं लूंगा मैं विराम, तुम्हें करूं प्रणाम। शुरू शत नमन सिर पे हो तेरा को ये खबर है दर्द।